শিব বাবার, শিব বাবা জব সে আপকে যাদো
विषय है माया की छाया और छाया की माया। माया की छाया और छाया की एक अंधा व्यक्ति कभी अपने मित्र के घर गए। रात हो गई। जब वो अंधा व्यक्ति घर लौटने लगा तो मित्र ने कहा कि बीच में जंगल आता है, तुम ऐसा करो एक लालटेन साथ में लेके जाओ। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मुझे लालटेन का क्या उपयोग, वैसे भी तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, तो मैं लालटेन लेकर करूं क्या। मित्र ने कहा, माना तुम्हें नहीं दिखता परंतु अंधियारी रात है, कोई दूसरा तुमसे शायद टकरा जाए। यदि तुम्हारे हाथ में कंदील होगा, लालटेन होगा, तो दूसरा जो उधर से आ रहा है उसे पता चल जाएगा तुम हो और वो तुमसे नहीं टकराएगा, इसलिए तुम ये कंदील ले जाओ। तो वो अंधा व्यक्ति लालटेन लेता है और वापस लौटने लगता है। जंगल का रास्ता, रात्रि का समय, और जब वो जा रहा होता है एक व्यक्ति अचानक उससे आके टकराता है। तो वो अंधा व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम भी मेरी ही तरह अंधे हो, अगर तुम्हें दिखता तो तुम ये देख लेते कि मेरे हाथ में एक लालटेन है, क्या मैं किसी दूसरे अंधे व्यक्ति से मिल रहा हूं। वो व्यक्ति कहता है, क्षमा करना परंतु मैं अंधा नहीं हूं, फिर भी मैं आपसे टकराया, क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। क्योंकि वो लालटेन बुझ गया था और वो व्यक्ति जिसे प्रकाश समझ रहा था और व्यक्ति जिस लालटेन उस कंदील को लेकर चल रहा था वो बुझ चुका था और वो ये सोच रहा था कि वो जला हुआ है, वो प्रकाश दे रहा है और उसी को लेकर वो जा रहा था, इसलिए कोई और टकरा है। जिस लालटेन को लेकर हम चल रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ज्ञान का प्रकाश है, हमारे पास वो ज्ञान है जो संसार में किसी और के पास नहीं है, शायद या फिर ऐसा तो नहीं कि वो भी बुझा हुआ है और हम अपनी ही अकड़ में चल रहे हैं कि वो प्रकाश, वो लालटेन हमारे हाथ में है। ज्ञान तो है, परंतु क्या वो ज्ञान प्रकाश बन रहा है? ज्ञान तो है, परंतु क्या वो ज्ञान समझ बन चुका है? ज्ञान तो है, परंतु क्या समझ के आलोक से हमारी दिनचर्या जगा रही है? एक है श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म को जन्म देते हैं, और यदि कोई श्रेष्ठ संकल्प करे और ये पूछे कि श्रेष्ठ संकल्प करने के बाद भी श्रेष्ठ कर्म क्यों नहीं हो रहे, कर्मों तक वो श्रेष्ठ संकल्प ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहे, व्यक्ति अपना अंतर निरीक्षण करता है और ये पाता है कि शायद मुझे आता नहीं कर्म को, श्रेष्ठ संकल्पों को कर्म तक लाना। पर यह भी तो हो सकता है कि जिसे वो श्रेष्ठ संकल्प समझ रहा है और जिसे वो ज्ञान समझ रहा है, उसी ज्ञान में कहीं ना कहीं त्रुटि है, उसी समझ में कहीं ना कहीं खोट है, क्योंकि यदि श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो अनिवार्य रूपेण श्रेष्ठ कर्म होंगे, परंतु फिर भी श्रेष्ठ कर्म नहीं हो रहे, इसका अर्थ उस प्रोसेस में नहीं, शायद उस ज्ञान के समझ में ही खोट है, दोष है। एक प्रश्न हरेक अपने आप से हरेक को पूछना है, क्या मैंने इस ज्ञान को समझ लिया? क्या जैसा मैंने समझा है ये वैसा ही है जैसा सुनाने वाले ने सुनाया? ज्ञान सारा व्यक्त, बाप दादा का अव्यक्त स्थिति में सुनाया हुआ ऊंचाई से है, ऑडियंस नीचे, आत्माएं नीचे, शब्द हाथ में है, मुरलिया हाथ में है, परंतु वो साधारण से शब्द, वो मुरलिया जो शब्द हमारे हाथ में है, क्या उस शब्दों को, उस ज्ञान को हमने वैसा ही समझा जिस अवस्था में वो सुनाया गया? ज्ञान सरोवर में किसी कॉन्फ्रेंस में एक जज आए थे और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी जो शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा था कि जितने भी भारत में शास्त्र है वो सारे शास्त्र ऋषि मुनियों ने बहुत ऊंची अवस्था में लिखे हैं, अगर उनको समझना है तो केवल वो शास्त्र का होना पर्याप्त नहीं है, स्थिति भी ऐसी ऊंची होनी चाहिए जिस अव्यक्त स्थिति में, जिस श्रेष्ठ स्थिति में उन ऋषि मुनियों ने लिखा था। वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे, उनके जीवन की क्या तपस्या थी, उनके जीवन में क्या त्याग था, कैसा वैराग था, कैसी पवित्रता थी, कैसा ब्रह्मचर्य था, उसी ब्रह्मचर्य में स्थित होकर जब तक चेतना उस ज्ञान को नहीं सुनेगी, धारण करेगी, समझेगी, तब तक केवल हाथ में शब्द होंगे और हम एक कंदील, एक लालटेन लेकर चल रहे हैं और वो बुझा है और हमें लग रहा है वो प्रकाशित है। यदि भगवान ने मुरली इस अवस्था में सुनाई है, उसकी परम ऊंच अवस्था में, तो हमें भी अपनी अवस्था को उसी लेवल पर ले जाना पड़ेगा, तभी वो शब्द, वो अव्यक्त वाक्य, वो भावार्थ, वो शब्दार्थ, वो गुणार्थ हमारी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। मुरलिया आ रही है, मुरलिया जा रही है, परंतु आत्माओं में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? किस तल पर यह हो रहा है? इसमें काम अवचेतन मन के तल पर करना होगा। यदि एक बर्फ का टुकड़ा फेंक दिया जाए पानी पर तो अधिकांश हिस्सा नीचे होता है, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर तैरता है। जो वो हिमखंड है, आइसबर्ग, उसका नीचे का हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड है। जब तक वहां पर परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर परिवर्तन करके कुछ नहीं होगा। जब तक अवचेतन मन तक हम नहीं पहुंचते तब तक परिवर्तन नहीं होगा। और माया का साया और विकारों का साया और विकारों का प्रभाव अवचेतन मन पर है। इसलिए बाह्य रूप से कितना भी कोई कुछ कर रहा है फिर भी दिखाई देता है कुछ भी नहीं हो रहा। विदेश में वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, 10 साइंटिस्ट ने मिलकर एक व्यक्ति को हिप्नोसिस कर दिया, सम्मोहन, जिसमें चेतन मन को शांत कर दिया जाता है और अवचेतन मन को सीधा संदेश दिए जाते हैं, और उसे ये संदेश दिया उस हिप्नोटिक स्टेज में कि ये जो डॉल खिलौना है, टेडी बेयर है, जब तुम इस हिप्नोसिस से बाहर आओगे तो इसको बहुत प्यार करोगे, इसको पकड़ोगे, इसको गले लगाओगे, इसको चूमोगे, उस खिलौने को। थोड़ी देर के बाद वो हिप्नोसिस से बाहर आए। हिप्नोसिस से बाहर आने के बाद, उस सम्मोहन से बाहर आने के बाद, बाथरूम गया, पानी पिया, उसको कोई गणित के इक्वेशंस दिए, वो भी उसने सॉल्व किए, ये देखने के लिए अभी वो पूरा होश में है, अभी वो उस हिप्नोटिक स्टेज में नहीं है, उस सम्मोहन की दशा दिशा में नहीं है। उससे वो पूर्ण रीति से बाहर आ गया, उससे कुछ प्रश्न पूछे गए, गणित दिया गया और अखबार दी गई, वो सब उसने पढ़ा और पूरा होश में। और जब वो सम्मोहन अवस्था में था तब उसे एक संकल्प दिया गया था कि ये जो खिलौना है, ये जो टेडी बेयर है, ये बहुत सुंदर है, इससे सुंदर संसार में और कुछ भी नहीं है। तो अब वो जब होश में है, वो टेडी बेयर, वो खिलौना वहां रखा हुआ है, बार बार उसका ध्यान उसकी ओर जा रहा है, बार बार मन में उस संकल्प उत्पन्न हो रहा है उसको जाकर हाथ लगाऊं। उसमें से एक वैज्ञानिक उस टेडी बेयर को पीछे छुपाता है तो वो इस तरह देखता है, क्या है, क्यों इसको छुपाया गया, उसे ही समझ में नहीं आ रहा, इस खिलौने से मुझे तो कोई लेना देना नहीं, फिर भी मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूं कि मुझे इसको देखना है। थोड़ी देर के बाद एक वैज्ञानिक उस खिलौने को कबर्ड के अंदर रख देता है तो उसे बेचैनी होती है, वो कहती है नहीं निकालो उसको, कहता है निकालो उसको, और उसको पकड़ के एकदम से गले में लगा देता है। उसे पूछते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो कहता है मुझे भी नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं, ये क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि जो संदेश दिया गया था वो सीधा अवचेतन मन तक गया था। इसलिए अवचेतन मन का एक नियम है जो सभी को समझ लेना है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कभी भी बहस नहीं करता, कोई आर्गुमेंट नहीं करता, कोई तर्क नहीं करता, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजनिंग नहीं। अगर हम अवचेतन मन को यह समझा दे मैं बहस हूं, मैं बहस हूं, मैं बहस हूं, और फिर उससे कहो जो मुरलियों में आता है इस दरवाजे से निकलो, तो कहेगा मैं नहीं निकल सकता क्योंकि मैं तो बहस हूं। मान लिया है अवचेतन मन ने, हमारे अवचेतन मन में जन्म जन्म से हमने क्या माना है, जन्म जन्म से कौन से संस्कार पड़े हैं, वही संस्कार बीच बीच में ऊपर निकलते हैं और सारे तर्क, सारी श्रीमत सबको एक तरफ कर देते, इतना पावर उनमें है। इसके लिए सारा पुरुषार्थ, सारी उपासना, सारी साधना अवचेतन मन के तल पर होनी चाहिए। और यह अवचेतन मन दो समय खुलता है, अगर यह चेतन मन है या अवचेतन मन है, बीच में एक बैरियर, प्री कॉन्शियस, सुबह उठते ही यह खुलता है और रात को सोते समय यह खुलता है। रात को हम सोते समय क्या संकल्प करके सो रहे हैं, क्या देख कर सो रहे हैं, क्या सुनकर सो रहे हैं, क्या सोचते सोचते सो रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं। सारे दिन भर कोई एक आत्मा है जिसने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, और रात का समय आता है और विकारों का आकर्षण होता है और उसे कुछ देखना है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, और वो करते करते वो आत्मा सोती है और फिर सुबह अमृत वेला उठती है 3:30 बजे और फिर योग करती है। पर जो देखा और जो सारे दिन भर मुरली सुनी, क्लासेस सुनी, पुरुषार्थ किया, वो सब कॉन्शियस माइंड पर तैर रहा है, जो देखा वो सीधा अवचेतन ने अंदर धारण कर लिया है। इसलिए परिवर्तन नहीं हो पाता। उठ तो गए अमृत वेले, परंतु उस अमृत वेले में कोई अनुभव नहीं। एक कुमारी ने हमको एक पल बात बताई जिससे हमको बहुत दुख हुआ आज। उसने कहा बात बताने जैसी नहीं है। उसने कहा, पिछले 6 मास से जब से सेवा केंद्र में गई हूं, एक नई आदत लग गई है जो कि पहले नहीं थी। 9 से 11 बजे बैठकर टीवी देखे, रोज रात को 9 से 11 बजे तक। सारे दिन भर सेवाएं, ज्ञान योग कोर्स कराना, सब कुछ कराना और रात को ये काम करना। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत अच्छा कुछ आ रहा है, ये बात नहीं है। हैबिट हो गई है, आदत पड़ गई है, अब जो भी दिखाया जा रहा है वो देखना ही है, ऐसा हो गया है। क्या अंदर जा रहा है अब इसकी कोई गारंटी नहीं, कुछ भी जा सकता है जो उसमें होगा। और उसी अवस्था में व्यक्ति सोता है और फिर अमृत वेला उठता है और अमृत वेला भी अच्छा करता है, परंतु अच्छा अमृत वेला किसे कहेंगे, क्योंकि जो देखा वो सब घूमेगा बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह मन में। क्या करते हुए हम सो रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का ये जो प्री कॉन्शियस है ये खुलता है, जो भी इसे दिखाया जाए, सुनाया जाए, समझाया जाए, सोचा जाए, सीधा अंदर प्रवेश करता है और वो सीधा स्वरूप बन जाता है। और सारे दिन भर जो उसको समझाया जाए, ये मुरली है, ये क्लास है, ये श्रीमत है, ये तर्क, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सार है, ये असार है, ये सत्य ये असत्य, ये सबको वो फेंक देता है। तो 63 जन्म माया का साया, विकारों का साया, देहभान का साया हम आत्माओं पर रहा है, और अचानक एक दिन भगवान आते हैं और कहते हैं आत्माभिमानी भव, और जन्म जन्म का देहभान, और हम पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। परंतु जो अंदर दबा है, दमित है, सप्रेस्ड है, पेरीड है, उसको हमें उघाड़ना होगा, देखना होगा और नष्ट करना होगा, और नए संस्कार धारण करने पड़ेंगे। इसके लिए सारा पुरुषार्थ शुड बी एट द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस मन को समझना है, और कैसे इस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे, हाउ टू टैप, दो बातें बताई। अमृत वेला वो खुलता है, रात को सोते समय वो खुलता है। अमृत वेला क्या हो रहा है, कैसे संकल्प कर रहे, और रात को सोने की विधि क्या है। एक अव्यक्त वाणी है, 95 दिसंबर 31 शायद, जिसमें बाबा ने कहा, यदि आपस में कोई सेवा समाचार भी शेयर करना है तो बाहर कमरे के बाहर जाओ, बोलो और फिर अंदर आओ, बात करते करते सोना ये अलबेलापन है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया में चिपक के रहना और फिर सोना अलबेलापन है, आलस्य है। उसी अवस्था में जो अंतिम संकल्प है सोते समय, वो प्रथम संकल्प होगा उठते ही। तो माया, विकार, कमजोरियां, देहभान अवचेतन मन में समाया हुए, अब इसको हमको यहां से उखाड़ फेंकना है, अर्थात माया चीत बनना है। ये जो माया का छाया है, इसको निकालने के लिए आज हम आपको ऐसी 10 बातें बताएंगे, जो सारी अव्यक्त वाणियां और साकार मुरलियों में आई हुई बातें हैं। ये सारी बातें रूपक के रूप में है, उपमाओं के रूप में है, उदाहरण के रूप में है, और इनका अभ्यास एकांत में करना है। सबके साथ करना उसका अपना महत्व है, परंतु अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए एकांत चाहिए। इसका अभ्यास मौन की स्थिति में करना है। अपनी दिनचर्या से ये 2 चीजें चुरानी, मौन को और एकांत को। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मेरे पास एकांत नहीं और मौन नहीं। चाहे कितना भी कोई व्यस्त हो, बिजी हो, हजारों सेवाएं हो, उसके बावजूद भी हमें एकांत को चुराना है, क्योंकि अध्यात्म का फूल एकांत में खिलता है। अध्यात्म का अनुभव मौन के मंदिर में होता है। चेतना निर्वाण के शिखर पर जब जाती है, तभी अध्यात्म के श्रेष्ठतम अनुभव होते हैं, जो आवाज में है, जो शोरगुल में है, और जो मिक्स है और जो खोया हुआ है संसार में, वो अध्यात्म में उन्नति नहीं हो सकती, कर सकता वो व्यक्ति। यदि इस मार्ग पर चलना है तो अंदर जाना होगा, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, बाहर से डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, अंदर रिकनेक्ट करना है, बाहर से थोड़े समय के लिए, थोड़े पल के लिए, दिनचर्या में ऐसा टाइम निकालना है कि जिसमें हम एकदम से अकेले हो जाए। और वो बेस्ट समय है अमृत वेले के बाद का समय, 4:45 से लेकर तो 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 7 बजे तक, ये जो समय है, इस समय को हर एक को सफल करना है। इस समय में अपने अंतर मन में यात्रा करनी है, सबकॉन्शियस माइंड में। तो क्योंकि अंदर जो है स्टोर हाउस है, बहुत सारा, इतनी सारी चीजें उसमें भरी है, यदि हम अपने आप को देखें तो हमें आश्चर्य होगा, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये करने वाला मैं हूं। एक तरफ अध्यात्म की ऊंची बातें और दूसरी तरफ एकांत में, कमरे में, दरवाजे खिड़कियां बंद है, और ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये मेरा स्वरूप? आश्चर्य होगा हर एक को ये देखकर, इतने सारे मुखौटे ये मेरे हैं, इतने सारे व्यक्तित्व ये मैं हूं, इनके सामने योगी, इनके सामने कुछ और, अकेले में भोगी। जो ऋषि मुनि और जो योगी और जो प्रवचन करने वाले और जो आध्यात्मिक गुरु है संसार में, उनको जब पैसे दिए जाते हैं तो ऐसे पैसे लेते हैं, पैसों की पोटली, कि जैसे अनासक्त है, कोई लेना देना नहीं। और वही व्यक्ति कमरे में जाकर दरवाजे बंद कर उन पैसों को रात को 11-12 बजे तक गिनते रहता है। ये कैसा अध्यात्म है? एक तरफ संपूर्ण अनासक्त, परंतु दूसरी तरफ मोह ज्यादा। एक साधु 40 साल तक पत्नी को छोड़ दिया और साधु बन गया, प्रवचन किए, शास्त्र पढ़े, शिष्य बनाए, आश्रम खोले, सब कुछ किया, पत्नी को छोड़ दिया, कोई लेना देना नहीं, मर चुकी है, ऐसा वैराग। 40 साल के बाद एक शिष्य एक दिन खबर लाता है कि आपकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया। वो कहता है, अच्छा हुआ झंझट मिटी, अभी तक झंझट थी, अभी तक पकड़े हुए थी चेतना, उसी व्यक्ति को दमन ना हो, रूपांतरण हो। सबसे पहली बात स्वदर्शन चक्र, माया को जीतने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में जो विकारों की छाया है, अंश है, जो वंश को उत्पन्न कर सकता है, एक ही चीज की आवश्यकता है, स्वयं को देखना, चक्र घुमाना, 5 स्वरूपों का बार बार अभ्यास करना। और अभ्यास केवल अमृत वेला नहीं, केवल नुमा शाम का योग नहीं, दिनचर्या में करना। मैं वो हूं, मैं ये नहीं, मैं वो हूं, तत्वमसी। और उसको अलग अलग ढंग से करना। एक दूसरी विधि है, मैं आत्मा इस शरीर में हूं, इससे पहले किसी और शरीर में थी, पीछे पीछे जाना, उल्टा चक्र, मैं आत्मा यहां हूं, इसके पहले स्त्री शरीर में, उसके पहले पुरुष शरीर में, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी स्त्री कभी पुरुष, ये चक्र घुमाना है दिनचर्या। इससे इस शरीर से जो आकर्षण है वो थोड़ा थोड़ा कम होगा, पीछे 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 जाना है। एक चक्र है सीधा घुमाना, एक चक्र है पीछे वाला घुमाना, एक ये अभ्यास। दूसरा अभ्यास है स्त्रीत्व और पुरुषत्व के ऊपर निकलना है, मैं ना स्त्री हूं ना तो मैं पुरुष हूं, यह सबसे गहरे में आत्मा में समाई हुई चीज है। जैसे शांतिवन में 10 साल पहले हमें किसी ने कोई सौगात दी, हमसे कहा गया, वो कौन था जिसने सौगात दी, याद नहीं, कौन से सेंटर का था, याद नहीं, कहां दी, चलो याद है, ट्रांसपोर्ट के वहां पर किसी ने हमको कुछ सौगात दी, थोड़ा सा याद है, उसका नाम याद नहीं। और हमसे कोई ये पूछे क्या वो स्त्री थी या पुरुष था, वो याद है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो बहन थी या भाई थी, भाई था, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वाला जो भाव है सबसे गहरा बैठा हुआ है आत्मा में, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, उल्टे अभ्यास से इस भाव को दूर करना है कि मैं आत्मा, पीछे 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 चक्र घुमाते रहना, बार बार चक्र घुमाते रहना है। टाइम मिला, यहां से शांतिवन जा रहे हैं, टाइम है, कार में बैठे हैं, चक्र अंदर घूमता रहे। पहला है चक्र, दूसरा है छत्र छाया, अनुभव करना कि जहां मैं जा रहा हूं ऊपर से कोई एक अनसीन अननोन अज्ञात एक अदृश्य छाया, प्रभु छाया मेरे साथ साथ चल रही है। इस्लाम में यह मान्यता है कि मोहम्मद पैगंबर जब उस रेगिस्तान में अकेले चलते थे, कड़ी धूप तपती धूप में, तो बादल उनके ऊपर ऊपर चलता था ताकि उनको छाया मिले, और वो बादल किसी और को दिखाई नहीं देते थे, उनको ही दिखाई देते थे, और उनको पता रहता था कि ये बादल जो आ रहा है, जो चल रहा है, उस अल्लाह की मुझ पर रहमत है। हर समय ये अनुभव करना कि एक छत्र छाया मेरे ऊपर है। और विशेष रूप से सोते समय सबसे ज्यादा माया आत्मा को तभी आती। मैं यहां ऊपर से छत्र छाया है, और वो जो पूरा बिस्तर है, हम हमेशा कहते हैं ये यदि बेड है तो सात पहरेदारों को बेड के इर्द गिर्द खड़ा करना है। वो सात पहरेदार अर्थात सात समान, एक यहां एक यहां एक यहां, एक बीच में, एक बीच में, एक यहां एक यहां, एक एक संकल्प होगा, और वो पावरफुल संकल्प होंगे, जैसे मैं अनासक्त योगी हूं। एक को यहां खड़ दिया, अभी रात को सोने का समय है। दूसरा, मैं साक्षी हूं, संपूर्ण साक्षी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ये सेवा ये यज्ञ सबका मैं साक्षी हूं, हर बात का मैं साक्षी हूं, इतना साक्षी भाव में मैं स्थित हूं, क्योंकि अभी आत्मा शरीर को छोड़कर परमधाम जा रही है, ये खेल पूरा हुआ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, इतना स्वयं को समेट लेना, मैं वैरागी आत्मा हूं, यहां के भोग, यहां के विलास, यहां की इच्छा है, यहां की तृष्णा है, यहां की कुछ भी चीज मुझे नहीं चाहिए, मैं लगाओ मुक्त आत्मा हो, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, मेरा साथी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं सारे लगाव से मुक्त हूं, मैं बेहद का सन्यासी हूं, बुद्धि से सन्यास किया है विकारों का, संसार का, मैं परमधाम का निवासी हूं। आज बाबा ने कहा दूर देश से बाप आया है, वो दूर देश नजदीक भी है समीप भी है, क्यों दूर है, क्योंकि तुम्हारी इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर है, नजदीक क्यों है, क्योंकि तुम एक सेकंड में पहुंचते हो, मैं वहां का रहने वाला हूं, इस जगत से मुझे लेना देना ही नहीं, इतना अनासक्त मैं हूं, ये परदेश है मेरे लिए, ये मेरा देश ही नहीं है, ये मेरा लोक ही नहीं है, ये मेरे लोक मेरा वो घर है। और एक संकल्प लेना कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर जा रही हूं बाहर अपने घर। ऐसे संकल्पों को, ये बिस्तर है, एक एक जगह पर एक एक नियुक्त कर देना, और इस अवस्था में सोना, तो कोई विकार विकार का संकल्प नहीं आएगा। और ऊपर से अनुभव करना परमात्मा छत्र छाया मुझ पर, जो अनुभव रात में किया वही अनुभव अमृत वेला, वही फिर मुरली के समय, वही सारी दिनचर्या में भी कि छाया चल रही है ऊपर ऊपर। तो दूसरी बात है छत्र छाया, तीसरा है मंत्र, पहला चक्र, दूसरा छत्र छाया, तीसरा है मंत्र। कौन कौन से मंत्र दिए बाबा ने हमको? 10 मंत्र बताओ। मनमना भव, मध्याजी भव, कल की मुरली, कल की या परसों की, बाबा ने कहा गीता में 2 बार मनमना भव आता है, 6वें अध्याय में 18वें अध्याय में, उसमें भी कुछ बातें सही है जैसे आटे में लून। और दूसरा मंत्र कौन कौन से मंत्र दिए? मामे कम याद करो, और कौन से मंत्र दिए? हाँ, मध्याजी भव, और बहुत सारे हैं मंत्र पता चाहिए। और मेरा बाबा, बाबा मीठा बाबा, और हम सो सोहम, और हाँ वाह 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 वाह, और हमेशा शिष्य अपने गुरु को कहते हैं, गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं कि जब भी तुम्हें संकट हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। मुरलियों में भी आया है मेरा बाबा कहो और बाबा उपस्थित। हमने कितनी बार इसका प्रैक्टिकल में प्रयोग करके देखा है। हमको याद है बहुत समय पहले, तब हमारी एक आदत थी एकदम पक्का कि हमको बहुत जल्दी उठना है और एक तपस्या करनी है, और वो बहुत ज्यादा नियमित था। एक बार हम ट्रेन में कहीं गए और रात सुबह आंख खुली, ट्रेन में ही थे, तो हमने देखा कि एकदम दिन हो गया है, अमृत वेला मिस हो गया, तो एकदम से हमको दुख हुआ इतना लेट कैसे हो गया। माना कि ट्रेन में चलो 11 बजे सो या जो भी है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसे कैसे हो गया। और एकदम जैसे वो आर्त पुकार जैसे निकलती है बाबा के लिए, और कैसे ही हो गया, और एकदम थोड़ा सा दुखी हो रहे थे। तो ट्रेन चालू हुई, ट्रेन चालू हुई और थोड़ी आगे गई तो पता चला वो तो स्टेशन था। हमने खड़ी देखी तो अभी बराबर 2 बजे थे, जो नियम था वो नहीं टूटा। एकदम से भ्रम हो गया जैसे कि दिन हो गया है, दिन तो हुआ ही नहीं था, अभी रात ही थी, अभी अमृत वेला था। तो कभी कभी ऐसी आर्त पुकार निकले कि उसको हम ऑर्डर करें कि आ जाओ तो आएगा। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद सुन, जहां योगी है वहां मैं नहीं, वैकुंठ में मैं नहीं हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जो अनन्य भाव से मेरा प्रेमी मुझे पुकार रहा है, वह मैं वहां उपस्थित हो जाता हूं, उपस्थित हूं। और बाबा ने भी मुरलियों में यही बात कही है, तुम कहो दिल से, मुख से नहीं, दिल से। यह सौदा मुख का नहीं, दिल का। तो मंत्र दिया है मन मना भव, मंत्र दिया है मामे कम याद करो, मंत्र दिया है हम सो सो हम, मंत्र दिया है ओम शांति, मंत्र दिया है बाबा, मंत्र दिया है मेरा बाबा, वाह 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 वाह। ये सारे मंत्र है, एक लिस्ट बनानी है हर एक को कि बाबा ने क्या क्या मंत्र दिए, और उनका प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है उन मंत्रों के साथ। तो तीसरी बात है मंत्र, चौथा है आंख, पहला चक्र, दूसरा छत्र छाया, तीसरा मंत्र, चौथा आंख। बाबा ने कहा जब जंगल में आग जला कर रखते हैं तो क्या होता है, जानवर नहीं आते। लगन की आग जला कर रखनी है तो कोई भी विकार का संकल्प नहीं आएगा। शुरुआत संकल्प से होती है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी में बोला वृत्ति फाउंडेशन है वातावरण का, और वृत्ति का भी फाउंडेशन है संकल्प। आग जगा कर रखनी है, लगन की आग चाहिए, आग धड़कती हुई आग। ऐसी जब आग रहेगी अंदर कि मुझे करना है, चाहे कोई करे या ना करे, जिसको जो करना है करे, मुझे करना है, ऐसी लगन, ऐसी बात और तात। अभी 3 दिन पहले वरदान में था, अंदर
लगन अर्थात एक ही संकल्प, एक ही रटन करना है, करना है, करना है, करना है। जब विश भाई कहते थे अमृत वेला बहुत अच्छा होता है, शाम का भी बहुत अच्छा होता है, दिन में ये बुझ जाती है, मतलब है कम हो जाए पर बुझ ना जाए, एकदम समाप्त ना हो जाए दिनचर्या में भूषा, कि शाम को ऐसा ना हो कि बाबा भी है क्या, इतना बिजी हो गया दिनचर्या में, सेवाओं में, जिसकी सेवा कर रहे उसी को भूले हुए पता ही नहीं, और संघर्ष हो रहा है, ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, संस्कारों की टक्कर हो रही है, मैं राइट हूं ये मन में दौड़ रहा है, झरमोई झरमोई हो रही है, गॉसिप्स हो रही है, पर चिंतन हो रहा है, और फिर शाम को लगता है मैं अकेला हूं, सारा पुरुषार्थ गुम। तो लगन को बना के रखना है, आग लगानी है, उसके बाद है वास धूप, पवित्रता की वास धूप, बाकी सब कम हुआ तो चलेगा, प्यूरिटी कम नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा, परंतु ब्रह्मचर्य अड़िग हो, कोई देह हमें आकर्षित ना करे, मिट्टी लगे, छी छी ये देह, इस देह का इस रीति से चिंतन करना, इस देह में है क्या, काहे का सौंदर्य, आज भी कहा सुबह जिस्म को न देखने वाले, रूहानियत अर्थात रूहानी दृष्टि, जिस्म को ना देखने वाले, देखते हुए भी ना देखने वाले, अगर देखना ही है तो इसके वास्तविक स्वरूप को देखना, हड्डी मांस मल मूत्र से भरा, मूत पलीती, बॉडी पोल्यूटेड विद यूरिन, ऐसा ये कपड़ा है। इसके लिए एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कुमारों से कहा है 72, केवल मस्तक मणि को देखो, आज से सभी कुमार प्रतिज्ञा करेंगे कि हम देह रूपी सांप को नहीं देखेंगे, सांप में विष होता है, केवल मस्तक मणि को देखेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा बाप दादा ने कराई। तो संपूर्ण पवित्रता का आधार स्तंभ ब्रह्मचर्य, अगर उसी में हलचल है, अगर ये आंखें, आज कहा ना दृष्टि से विरवृत्ति बनेगी, दृष्टि से पहले दृष्टि जाएगी और फिर खींचेगी, मन में कुछ नहीं है परंतु देखना अर्थात निर्माण होना, फिर धीरे धीरे इमेजेस क्रिएट होगी, तो वास्तु पवित्रता की। अगला है संगठन का किला, इस किले के अंदर रहना है, कौन सा किला, यज्ञ एक किला है, और दूसरा है तीव्र पुरुषार्थियों का संग, जो होश में है, जिनको पता है और जो पुरुषार्थ में लगे हैं, उनको पता है कि ये समय वेस्ट करने का नहीं है, घूमने फिरने का नहीं है, और भोजन के रस में डूबने का नहीं है, ये समय तपस्या का है, ये समय व्यर्थ बातें करने का नहीं है, इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, इस सेंटर पर क्या हो रहा है, उस सेंटर पर क्या हो रहा है, तुम्हें क्या करना है, माइंड योर ओन बिजनेस, ताक झाक नोक झोक इधर उधर, क्योंकि आंखें जहां जाएगी, जो देखेगी, मन वहां जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था तुमको केवल नीचे नासिकाग्र दृष्टि रखकर चलना है, ऐसी शिक्षा दी थी, क्योंकि आंखें जहां देखेगी, जहां जाएगी, वो आकर्षित करेगी, खींचेगी, तुमको देखना ही नहीं है चलते समय कुछ और, इधर देखते चले चले, बस ये नियम थे उन सन्यासियों के, उसके बाद में भी पतन हुआ, तो कितना ध्यान की आवश्यकता है, सब जगह प्रलोभन ही प्रलोभन है, माया ही माया है। तो किले के अंदर रहना है, ऐसा संग ढूंढना है, पहले तो उस संग से मुक्त होना है जो हमें तीव्र पुरुषार्थ से अलग रख रहा है,
इंटरनेशनल योग का समय और कोई मिल जाए और कहे कि चलो किचन में कुछ बनाते हैं, तपस्या का समय चल रहा है, कोई हमसे कहे चलो थोड़ा घूम के आते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा ऐसे व्यक्ति को अपना दुश्मन समझो, एक साकार मुरली में आया है, सुनहरी टोली दादी जानकी के शब्दों में। और जैसा सन्यासियों के लिए एक नियम है कि सन्यासी कमाता नहीं है, समाज से लेता है और खाता है, इसलिए उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो समाज का ऋणी है। जो और जिन्होंने अपने जीवन को तन मन धन को यज्ञ में स्वाहा कर दिया, अगर वे यज्ञ में आकर और यज्ञ से जिनकी पालना हो रही है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जिनको सब कुछ यज्ञ से मिल रहा है समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, संसार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक बार रतनमणि दादी जी ने बताया था एक सेवाधारी का कितना खर्चा है माउंट या यहां रहने का, एक सैंडविच कितने में मिलता है बाहर, एक कमरा कितने में मिलता है बाहर होटल में, यहां एक सेवाधारी जो आता है और उसका खर्चा अगर निकालो और उसकी सेवा और खर्चा, और हम कहते हैं हमने आज बहुत सेवा कर ली, 4 घंटे सेवा, 5 घंटे सेवा और खर्चा ढेर सारा एक व्यक्ति पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। यदि हमारा अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हो रहा है हम अपराधी है संसार के, यदि हमें नींद आ रही है हम अपराधी है संसार के, क्योंकि हमारा अलबेलापन अर्थात हम जगत का नुकसान कर रहे हैं। हमारा बैठकर 2-2 घंटा बात करना या टीवी देखना अर्थात हम संसार के कितने बड़े अपराधी बन रहे हैं। हम आए किस लिए थे और कर क्या रहे, तप से क्यों नहीं जीवन तप रहा। संपूर्ण निर्विकारिता का लक्षण, फिर भी आवेग आवेग क्यों आ रहे, क्यों क्यों वासनाएं उत्पन्न हो रही है चेतना में। धक्का लगना चाहिए मैं ये कर क्या रहा हूं, खुद खुद को जगाना है, संगठन के किले के अंदर रहना है। इस किले के अंदर पाप नहीं होगा, विकर्म नहीं होंगे, कुकर्म नहीं होगा। इस किले से बाहर जाओ, मन से पाप चलो विकर्म चलो, इस किले के अंदर ही रहना है और ऐसी आत्माओं का संग देखना है जो जागृत है ज्ञान और योग के प्रति। खाली सेवा करना सब कर रहे हैं, ये नहीं भूलना है कि सेवा के पहले 3 चीजें होनी चाहिए तो ही वो सेवा सफल होगी, त्याग तपस्या और वैराग। ये 3 को छोड़ दिया और सेवा में लगे तो वो सेवा में संघर्ष होगा, टकराव होगा, ईगो होगा, जेलसी होगी, सब कुछ होगा। हमें याद है एक भाई जिसने बहुत सेवा की और बहुत सेवा करता था, दिन रात सुबह से लेकर रात तक भाग दौड़, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा, परंतु ज्ञान योग के लिए समय नहीं। फिर जब हॉस्पिटल में ऊपर एडमिट हुआ और फिर सेवाधारी नहीं मिल रहा था और सेवाधारी था और वो छुट्टी पर चला गया, उसके मन में ऐसे संकल्प आने लगे, इतना दुखी होता था, सोचता था वो जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया भगवान के यज्ञ में और एक एक पल सेवा में लगा दिया था, भाग दौड़ केवल वो वाली सेवा, वो सोचता था आज अगर मैंने शादी की होती तो आज मेरी बीबी और बच्चे मुझे दिखाई देखने के लिए होते, ये संकल्प उसके आने लगे और उसी दुख की अवस्था में ही शरीर को छोड़ा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, सेवा तो उसने बहुत की परंतु ज्ञान का चिंतन और ज्ञान का मनन और ज्ञान का अध्ययन के लिए समय नहीं था और तपस्या के लिए नहीं समय था और बैठकर योग करने के लिए नहीं समय था। और शरीर कितने हुए, इसके लिए ये 3 चीजें पहले चाहिए, वैराग त्याग और तपस्या, उसके बाद 4th नंबर पर सेवा है। जो ये 3 को छोड़ता है और सीधा सेवा में उतरता है वो सेवा उसकी खुशी को उसकी स्थिति को नष्ट कर देगी। बाबा ने कहा है एक मुरली 87, सेवा में तुम्हें बहुत वैराग आता है संसार से, जब सेवा में इतनी खुशी होती है उससे, आगे का स्टेटमेंट था, पर इसी सेवा में वैराग भी नष्ट हो जाएगा।
वैराग को भी खत्म, सेवा ही कर देगी यदि तुम योग युक्त ना हो सेवा में। तो संगठन के किले के अंदर रहना है, तीव्र पुरुषार्थियों का संघ ढूंढना है, और उससे भी महत्वपूर्ण उस संघ से हट जाना है जो हमें तीव्र पुरुषार्थ से हटा रहा है। वो व्यक्ति हो सकता है, संबंध हो सकता है, रहते यहां पर संबंध उधर दूर कहीं सेंटर पे जोड़ के रखा है, रहते यहां पर फोन पर बातर इस कोने में उस कोने में इस अंधियारे में फोन पर बातें चल रही है, और वॉट सोच रहे हैं मैं इसका कल्याण कर दूं, कुमार सोच रहे हैं मैं इस बहन का कल्याण कर दूं, उसका पति है वो देखेगा बैठा है ऊपर परमधाम में। डू नॉट इंटरफियर इन एनीबॉडीज मैरिड लाइफ। वो विधवा हो गई क्या जो हम सोच रहे हैं हम उसका कल्याण करें? उसका पति है ना, उसके पति को पता है उसको कहां रखना है, किस सेंटर पर कौन सी सेवा देनी है। हम सोच रहे नहीं नहीं मैं सिखाता हूं, मैं समझाता हूं, उनकी समस्या मैं सॉल्व करता हूं। डू नॉट ड्रैग एनीबॉडी इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उसको घसीट कर नहीं लाना है, उसके पति से दूर मत कर दो। हम आइडियाज बहुत अच्छी दे देंगे पर वो अपने पति से जुदा हो जाएगी। चाहे स्त्री चाहे पुरुष, आत्मा तो यह आत्मा की बात चल रही है, बहन की नहीं। उसके बाद है पहरेदार। दो पहरेदार चाहिए, कौन कौन से? अटेंशन और चेकिंग। खुद ही की अटेंशन, खुद ही को चेक करते रहना, खुद ही से बात करते रहना, खुद ही को फटकारते रहना, खुद ही को प्यार भी करते रहना। जैसे कल भी सुनाया था मॉस्को की सड़क पर एक बार एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा, वो ट्रॉली होती है उस पर लेकर जा रहा है और कह रहा है इब्राहिम शांत हो जाओ, इब्राहिम चुप हो जाओ, इब्राहिम बस अब घर आया कि आया। और वो बच्चा रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है और शांत हो ही नहीं रहा है, और वो पिता उसको कह रहा है कि इब्राहिम बस अब थोड़ी देर है, इतना बेचैन मत हो। तो एक महिला देखती है और कहती है क्या इस बेटे का, इस बच्चे का नाम इब्राहिम है? वो कहता है नहीं मेरा नाम अब्राहम है, मैं अपने आप को समझा रहा हूं कि बस अब घर आया कि आया, इसको समझाने का तो कोई उपाय नहीं, वो सुनेगा थोड़ी, खुद ही से बात कर रहा हूं, खुद ही को कह रहा हूं इतना बेचैन क्यों हो रहे हो, बस अब घर आया कि आया। स्वयं से बात करनी है। तीन कार्य हर एक को अपने दिनचर्या में करना है, लिख के रख लेंगे। स्वयं से बातें, बाबा से बातें और ज्ञान का चिंतन। दिनचर्या में ये तीन काम रोज होने चाहिए, और खुद से बातें करने के लिए एकांत चाहिए, और बाबा से बातें करने के लिए भी एकांत चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार हम योगी लगाए मैं आत्मा हूं, बाजू कर दो उसको, केवल उसको सुनाना। आज सुबह की साकार मुरली, बाप बच्चों को बहुत उल्हाने देते हैं, बच्चों के उल्हाने भी बाप को प्रिय है, नहीं तो बाप के सिवा बच्चे सुनाएंगे किसको? आया ना सुबह, सुबह की मुरली में है, कुछ भी उसको सुनाना, उससे बात करते रहना। अगर कुछ भी नहीं आता है तो जैसा वो छोटा बच्चा है मंदिर में बैठा है और रोज आकर प्रार्थना भगवान से कहता है, वो पुजारी को आश्चर्य लगता है ये करता क्या है छोटा सा बच्चा। वो पूछता है तुम कौन से मंत्र पढ़ते हो? बोलता है मुझे मंत्र नहीं आते। क्या तुमने कोई शास्त्र पढ़े? वो बच्चा कहता है मुझे शास्त्र भी नहीं आते। फिर तुम प्रार्थना करते क्या हो? कौन सी प्रार्थना? वो कहता है मुझे प्रार्थना भी नहीं आती। करते क्या हो? वो कहता है मैं ए से लेकर जेड तक एबीसीडी पढ़ता हूं भगवान के सामने, ए बी सी डी, और उसको कहता हूं कि तुम्हें जो प्रार्थना बनानी है से बना दो। तो भगवान को कौन सी प्रार्थना पसंद आएगी? ये बच्चा पसंद आएगा कि वो ओम जगह जगदीश हरे और वो उधर की प्रार्थना करने वाले रटी रटाई? सच्ची आत्मा पर साहेब राजी, इसलिए कितना सच्चा बनना पड़ेगा। परसों की साकार मुरली, सच्ची आत्मा पर साहेब राजी फुल स्टॉप, तो कितना सच्चा बनना पड़ेगा। हृदय स्वच्छ, वो देखता है। तो पहरेदार कौन से खड़े करने हैं? दो, अटेंशन और चेकिंग वाले दो पहरेदार। उसके बाद में डबल लॉक, याद और सेवा।
आठवां पॉइंट डबल लॉक, बिजी कर देना है खुद को याद करने में या सेवा करने में, इसके अतिरिक्त और कुछ ना हो, ज्ञान योग और सेवा बस। फिर वो सारे व्यक्ति हमारे जीवन में उनकी लिस्ट बनाओ जो इससे हमको दूर लेके जाते, उनको हटा दो, निकाल दो, शत्रु ही समझना है उनको जो हमें मार्ग से विचलित करते हैं, चाहे कितना भी अच्छा हो। शत्रु अर्थात उनको बताना नहीं है तुम मेरे शत्रु हो, अंदर ही अंदर से अलग हो जाना। उसके बाद है सीट, सोमान की सीट, और लास्ट है पंख, उमंग उत्साह के पंख। ऐसी 10 बातें हैं जो हमें अपने जीवन में लानी है, जिससे माया का प्रभाव जो छाया पड़ी है वो कम हो जाएगी। निरंतर उमंग उत्साह कैसे रहे, क्या करेंगे इसके लिए, क्या उत्तर है? पुरुषार्थ में उमंग उत्साह कैसे रहे? जब ज्ञान में आए थे तब बहुत उमंग उत्साह था, ये कर दू और वो कर दू, फिर धीरे 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 उमंग उत्साह कम हो गया। क्यों कम हुआ? एक अव्यक्त मुरली में प्रश्न था, बच्चे जो पहले बहुत पुरुषार्थ करते थे बाद में कुछ समय के बाद उमंग उत्साह कम हो जाता है, क्यों? क्या करते हैं? नवीनता नहीं है, वही वही कर रहे हैं, वही अमृत वेला उठा और योग किया, फिर वही मुरली, वही लिखा, डायरी बंद की, और फिर वही सेवा, एक ही सेवा चालू है इतने समय से। उसमें सेवा में नवीनता नहीं, ज्ञान में नवीनता नहीं, योग में नवीनता नहीं, कहीं कुछ नवीनता नहीं है, डल एंड ड्रैब लाइफ। एक तो ये कारण है, दूसरा आलस आ गया, अलबेलापन आ गया, वो भी क्यों आ गया? आराम पसंद, सुख सुविधाओं में डूब गए, और क्या हुआ? दूसरों को देखने लगे, ये इतने पुराने, ये तो कुछ नहीं करते, हम क्यों करें? ये भी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करेंगे, उनका जमा है, तुम्हारा जमा नहीं है। वो ऐसे आश्चर्य हो जाएंगे एक सेकंड में लास्ट में, और हम देखते ही बैठेंगे, अरे उमंग उत्साह को जनरेट करना है। मुरली से वो वाक्य निकालने हैं जिसमें बहुत पावरफुल वाक्य है, उमंग उत्साह वाले, और अलग से लिख के रखना और रिवाइज करते रहना। सीट सोमान की, रोज की मुरली से सोमान निकालने हैं। आज की मुरली से क्या क्या सोमान थे हम अभी थोड़ी देर में रिवाइज करेंगे एक अलग तरीके से, आज सुबह की मुरली। फिर भी अभी पूछ रहे क्या क्या सोमान थे, 50 सोमान बनाओ आज की मुरली से, फटाफट बोलो। रूहानी, रूहानियत की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं, और डबल लाइट फरिश्ता हूं, और पीछे से तपस्वी मूर्त कहां पर है, स्नेही हूं, और स्नेह का पुंज हूं, स्नेह की पुंज क्या, स्नेह की पूंजी। चलो ये मुरली तो हम रिवाइज करेंगे आगे, तो ये 10 बातें याद रखनी है। सबसे पहला बताया स्वदर्शन चक्र, पहला चक्र घुमाते रहना, टाइम मिले चक्र घुमाओ। मुरली में यहां तक बाबा ने बोला है कि रात में जब अचानक आंख खुल जाए तो क्या करो, रात में सो रहे हो और अचानक आंख खुल जाए सकाश दो और फिर सो जाओ। एक अव्यक्त मुरली में था, एक भाई था मधुबन में ऊपर, तो वो नीचे बैठ के योग करता था, तो पूरा वो भयंकर नींद आती थी, पूरा नीचे ही झुक जाता था। उसको बाजू वाला कहता है उठो, वो कहता है मैं सकाश दे रहा हूं धरती को, नीचे झुक कर धरती को सकाश, मैं सो नहीं रहा हूं धरती को सकाश दे रहा हूं। तो रात में अचानक नींद खुल जाए तो क्या करना, सकाश दे दो आराम से और सो जाओ, सकाश दे दी फिर से सो जाओ। तो सबसे पहला चक्र, दूसरा छत्र छाया, तीसरा मंत्र, चौथा आग, आग जला के रखनी है इर्द गिर्द, कोई शत्रु ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए। अगला वास धूप, पवित्रता की वास धूप जगा के रखनी है, नींद ही उड़ जाए। अगला किला, किले के अंदर रहना है, किले के बाहर जाने का संकल्प नहीं करना है। किसी के मन में संकल्प तो नहीं है ना चतुर्भुज बनने का, अभी फिराक में ही अगर अवसर आ जाए और कोई मिल जाए। चतुर्भुज उधर बनना, सतयुग में, संगम युग में नहीं। कोई कोई अभी भी सोचे हुए है, कई मिलते हैं, तैयारी है बस। सोचा पन्ने से पहले एक बार मधुबन में चक्कर लगा के आना है बस, थोड़ा सा अगर कुछ चेंज हो गया तो हो गया, बाकी वो डिसीजन पक्का है। और फिर साथ साथ चलेंगे, साथ साथ योग करेंगे, पवित्र प्रेम। वैसे तो योग लगता है, पर अगर वो बाजू में बैठ जाए तो एकदम बाबा से पावरफुल योग लगता है, एकदम लाइट माइट आती है। एक माता जो बहुत पक्की थी और ज्ञान में जलती थी, उसने अपने बेटे को ज्ञान में लाया और वो ऐसा पक्का कुमार बन गया, इतना पक्का कुमार कि उसने कह दिया अब बस बाबा के लिए जीवन है और कुछ नहीं चाहिए। और अब माँ कुछ हलचल होने लगी, क्योंकि उसको तो बहू भी चाहिए, ज्ञान में तो चलना है, पर अच्छी बहू कोई मिल जाए ज्ञान में चलने वाली पक्की, शादी नहीं पक्की, थोड़ी पवित्रता में पक्की, ऐसी कोई बहू आ जाए घर में तो अच्छा। और जबरदस्ती उसने तो मना ही किया, पर उसने फिर बहुत सारा कुछ किया और उसकी शादी करा दी। और बहू ऐसी आई खतरनाक, इस सब का जीना हराम कर दिया। तो उस कुमार बेटे ने कहा, देखा तुमने ही कहा था शादी करो। मां ने कहा, कहा तो मैंने पर की तो तुमने ना। मेरे कहने से क्या होता है, की किसने? तो चतुर्भुज भव का वरदान अभी नहीं लेना, कहां थे? किला, किला के बाद दो पहरेदार, अटेंशन और चेकिंग के पहरेदार, उसके बाद डबल लॉक, खुद को बिजी कर देना है 24 घंटे में। वो कौन से 10 मिनट है, वो कौन से 10 मिनट है जिसमें मैं फ्री रहता हूं, और जहां माया आती है उसको बुद्धि में लाना है, उसकी एक लिस्ट बनानी है। कौन से 10 मिनट है, 15 मिनट है जीवन के 24 घंटे में जहां माया की प्रवेशता होती है, कौन सा टाइम जहां मैं डे ड्रीमिंग में चला जाता हूं, दिवास स्वप्न, कौन सा वो समय है जिसमें बुद्धि भटकती है? जरूर कोई ना कोई एक फिक्स टाइम होगा। किसी किसी का अमृत वेला के बाद का हो सकता है, किसी का मुरली के बाद, किसी का भोजन के समय का, भोजन में क्या बना है, क्या क्या बना है, और कहीं कुछ बना है क्या, ये सब्जी कहां से लाई, ये तो जनरल में थी नहीं, सबको रसगुल्ला मिला पर हमारा रसगुल्ला छोटा और बाजू की थाली का बड़ा, सबको टोलियां मिल रही है दादी जान की दे रही है, और जब हमारा नंबर आया तो सबसे छोटा आम हमको मिला, क्यों? बाबा हमेशा ही ऐसा करता है। दादी रह गई बाजू में और छोटा आम और दुख, किस्मत ही फूटी। आम भी मिलता है तो छोटा। कौन से वो 10 मिनट है जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कौन सा दिनचर्या का समय है जब बुद्धि भटकती है, निगेटिव संकल्प आने लगते हैं सबके प्रति, ये यज्ञ में जितने सारा परिवार है सब डेंजरस लगने लगते हैं, क्यों ऐसा होता है, उसकी चेकिंग करनी है। चेकिंग और अटेंशन, चेकिंग और अटेंशन, निरंतर प्रतिपल, एक दिन की बात नहीं है, दिवस रात्र अम्मा युद्धा सा प्रसंग अंतर बाह्य जग अणि मन, दिन रात हमको युद्ध का प्रसंग है मन और संसार, परंतु चेकिंग करते रहना है और स्थिर करना है स्वयं को। अगला डबल लॉक, डबल लॉक के बाद 9th स्वमान की सीट पर स्थित रहना है, रोज की मुरली से स्वमान निकालने हैं। मुरलियां बहुत लिख ली, लिखना बंद, अब केवल स्वमान निकाल के वही स्वमान लिखना है बस। पॉइंट्स बहुत लिख लिए, इतनी डायरी भर गई, कोई ऐसा है कि जो पुरानी डायरी खोल कर देखता है, हार्डली कोई होगा, लिख लिया वो हो गया। समान लिखना है या टॉपिक्स लिखना है मुरली से, अगला लास्ट पंख। तो ये 10 बातें हैं माया की जो छाया है उससे मुक्त होने के। अब इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक है छाया की माया। छाया की माया वो क्या है? एक है माया की छाया। हमारे पास एक भाई आते हैं डॉक्टर साहब, वो दोनों ज्ञान में है, उनकी पत्नी का नाम छाया है। तो वो कहते हैं मेरे पास तो दो है, एक तो माया की छाया और छाया की माया है। तो छाया की माया कौन सी है? 7 प्रकार की छाया है जो माया रूप बन सकती है। जैसे एक राजकुमारी थी जिसके पिता ने उसको बहुत सुंदर नेकलेस दिया, इतना मोह हो गया उसका उस नेकलेस में कि वो बस उस नेकलेस की हमेशा पहनी रहती, और एक रात वो नेकलेस चोरी हो गया। बहुत ढूंढा, सब की जांच पड़ताल हुई, मिला ही नहीं, पूरी राजभवन में नहीं था। बाद में शायद किसी ने ये निष्कर्ष निकाला कोई पक्षी उठा के लेके आओ। परंतु फिर राजा ने कहा कि जो भी इस नेकलेस को ढूंढ के लाएगा, इस हार को, उसको बहुत अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। एक व्यक्ति उस शहर में एक रास्ते से जा रहा है और उसको तालाब दिखता है, और तालाब में एक चमकीली चीज दिखती है। वो सोचता है कहीं यही नेकलेस तो नहीं, अगर मैं ये ले लूं और राजा को दे दूं तो मुझे बहुत अच्छा पारितोषिक मिलेगा। और वो एकदम खुश होता है, जाता है, पर वो बहुत गंदा तालाब है। हाथ डालता है पर हाथ में कुछ भी नहीं आता, और एक बार डालता है नहीं आता है, फिर उतरता है खुद उस गंदे पानी में, फिर भी हाथ में कुछ नहीं आता है। फिर हाथ पटकता है, सब करता है, कुछ नहीं मिलता, पर बाहर निकलता है तो चमक रहा है। थोड़ी देर में एक साधु वहां से गुजरता है। वो साधु कहता है क्या बात है, परेशान दिख रहे हो, पर ऐसी बातें किसी को बताई थोड़ी जाती है, प्राइवेट बातें है। साधु की बुद्धि का क्या भरोसा, बुद्धि पलट गई तो कहेगा मुझे ही चाहिए। वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। साधु कहते बताओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कहता है वो देखो हार चमक रहा है, ये राजा का की जो बेटी है उसका हार है, ये हार मुझे चाहिए, और वो हाथ में नहीं आ रहा, मैंने बहुत कोशिश की। साधु कहता है हार नीचे नहीं ऊपर झाड़ पर लटका हुआ है, जो नीचे था वो प्रतिबिंब था, वो छाया थी, रिफ्लेक्शन शेडो है, असली चीज ऊपर है। सबसे पहली छाया है शरीर, असली चीज देह नहीं, छाया है, असली चीज आत्मा है, ऊपर लटकी हुई, शरीर नीचे, शरीर के संबंधित सब कुछ, सब छाया है, शैडोज। और यदि उसी को सत्य मानकर हम समझ रहे यही है, इसी को पकड़े हुए। अभी अभी मुरली, लास्ट संडे की मुरली में प्रश्न था, आत्मा को सबसे ज्यादा प्रिय प्यार किससे है? शरीर से। बचाने का प्रबंध करती है, छूटता है तो बेचैनी कैसे होती है, जबरदस्त बीमारी थोड़ी सी पर बेचैनी इतनी लाता है साथ में, डर रहता है। अभी अभी हॉस्पिटल में 2 पेशेंट एक साथ एडमिट हुए, स्नेक बाइट, सांप ने काटा, नॉन पॉइजनस, ना कोई पॉइजन वाला सांप नहीं था, पर भय एंग्जाइटी इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, क्या हो जाएगा क्या नहीं पता, बहुत ज्यादा। इवन द वेमन ऑफ द स्नेक वुड बिकम पॉइजनस, पॉइजनलेस इफ यू कैन फर्मली डिनाई इट। विवेकानंद ने एक जगह कहा है यदि किसी को सांप भी काटे और वो कहे मुझे कुछ नहीं होगा तो वो सांप का जहर बेअसर होगा, अगर वो संकल्प इतना शक्तिशाली है तो। शक्ति नहीं है सांप के जहर को भी शरीर में अंदर घुसने की, अगर संकल्प ही कोई कर ले कि मुझे कुछ नहीं होगा। बाकी भय बहुत ज्यादा है, शरीर को ऐसे पकड़े हुए है पक्का। एक साधु बैठा हुआ है, एक छाया वहां से जाती है, वो कहता है तुम कौन हो? वो कहती है मैं प्लेग हूं, क्या करने जा रही हूं? वो कहती है आदेश हुआ है ऊपर से 1000 लोगों को मारना है आगे के गांव में। एक महीने के बाद वो छाया वापस लौटती है, वो साधु कहता है रुको, तुमने कहा था 1,000 लोगों को मारने की बात की थी, पर गांव में तो 3,000 लोग मर गए। वो छाया कहती है, मैंने तो 1,000 को ही मारा, बाकी सब भय से मर गए, डर से मर गए, एंग्जाइटी से मर गए, मुझे ना हो जाए, कैंसर हमें नहीं हुआ है, दूसरों को हुआ है, पर चिंता इधर चल रही है, हर गांठ कैंसर टाइप लगती है। भय, भयंकर भय, शरीर छूटने का भय, फिर हम अपने कारण जोड़ते हैं, मुझे सेवा करनी है, वो फला फला। निर्भय नहीं बनी है, आत्मा की अमरता का ज्ञान सुनाने वाले खुद ही भयभीत हो जाते हैं, कोर्स कराने वाले खुद ही भयग्रस्त हो जाते हैं, शरीर छूट न जाए। शरीर का ध्यान रखना, संभाल करनी, वो अलग चीज है, परंतु एक्सेसिव ऑब्सेशन, पागलपन उसके लिए विकार का अंश है। सबसे पहली छाया तो शरीर है, वास्तविक आत्मा है, दूसरी छाया है संसारिक सुख। वास्तविक सुख संसारिक सुख नहीं, संसारिक सुख कितना भी भोगो, कितना भी भोगो, वंस मोर की कामना के साथ ही व्यक्ति शरीर छोड़ता है, पूर्ण नहीं होते कभी भी भोग। तीसरा है इंद्रिय सुख, इंद्रिय से जो सुख मिलते हैं, इंद्रिय इंद्रियों को जब टच करती है, इंद्रिय विषय वस्तु को जब टच करती है तो सुख उत्पन्न होता है, परंतु हर वो सुख जो सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट के संपर्क से उत्पन्न होता है क्षणभंगुर है और अंततः दुख में परिणित होगा। ऑल टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंड्यूसिव टू पेन, एडिक्शन मात्र है, जो सबकॉन्शियस माइंड की बात कही थी, किसी को आदत ही पड़ गई है भोजन करने के बाद मीठा ही खाना है, वो एडिक्शन हो गया है, अगर उसको छुड़ाओ तो दर्द और पेन होता है। यही चीज खानी है, अच्छी चीज खानी है, जाकर देखो कुछ और बना है, भूख खत्म। सफेद चावल नहीं चाहिए, वो तेल से गुजरना चाहिए और उसका कलर बदलना चाहिए और उसको छोक लगना चाहिए, तब कहीं वो अच्छा लगता है खाने को। वो वाली दाल नहीं चाहिए, वो थोड़ा प्रोसेस की हुई हो तो अच्छा लगता है खाने को। वो सूखा नहीं चाहिए, उसको तेल से गुजारो, पकड़ पकड़ के हर चीज को तेल में डालते जाओ, एडिक्शन क्रिएट होता है यहां और आत्मा बंध जाती है एक पिंजड़े में, निकल नहीं पाती उससे। तो इंद्रिय सुख, अगली छाया है मान। संसार में मान मिल जाए, ब्राह्मण परिवार में मान मिल जाए, ये छाया है, भगवान मान दे रहा है, ये मान चाहिए। वो कह रहा है तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, सारी अव्यक्त वाणियां देखो, फर्स्ट पैराग्राफ, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और हमें मान चाहिए, टिमटिमाते दीपक है ये वाला मान, छाया है। दूसरा है स्तुति, प्रशंसा, रिकॉग्निशन, ब्राह्मण परिवार या संसार से, ये लोग मेरी स्तुति करे तो मुझे अच्छा लगता है। हमने कोई सेवा की और किसी ने कुछ कहा ही ना तो दुख होता है, हमने बहुत अच्छी रंगोली निकाली और किसी ने कुछ नहीं कहा तो, बहुत अच्छा भोजन बना है और किसी ने कहा ही नहीं है टेस्टी बना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई और किसी ने कहा नहीं किसने बनाई है। आत्मा अंदर से रिकॉग्निशन चाहती है, प्रेस चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए उसको, परंतु उसको खुद ही हमको समझाना है, इनका एप्रिसिएशन लेके क्या फायदा, जो आज तारीफ कर रहे हैं कल गालियां भी देंगे। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट कहीं भाषण देने जा रहा था और स्टेज पर उसके सेक्रेटरी ने उससे कहा कि इतनी सारी पब्लिक तुमको सुनने आई है, तुमको तो अंदर से बहुत खुशी हो रही होगी, अंदर ही अंदर। वो कहता है, बहुत खतरनाक उत्तर दिया उसने, यदि मुझे सजा सुनाई जाए, फांसी लगाई जाए, तो अभी जितनी पब्लिक है ना उससे डबल होगी। ये जो स्तुति करने वाले हैं, ये वही होंगे जो निंदा भी करेंगे, अपमान भी करेंगे, ग्लानी भी करेंगे, इसके लिए इनके आने से और इनके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए मैं इससे भी अनासक्त हूं, ऐसा उत्तर देता है। तो यहां सम्मान, यहां की स्तुति, अगला है यहां की प्रसिद्धि भी एक छाया है, फेम छाया है। अगला है यहां की प्राप्तियां, सांसारिक प्राप्तियां, धन पद, कोई इंचार्ज है, कोई छोटे पद पर है, ये एक छाया है। इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी स्थिति आगे है और जिसकी पवित्रता आगे, बस जिसकी स्थिति आगे है और जिसकी पवित्रता है। कौन कब से चल रहा है, कौन किस पद पर है, कौन क्या सेवाएं करता है, क्या अभी तक सेवाएं की, क्या क्या बड़े बड़ी चीजें की, सब एक तरफ। जिसकी स्थिति आगे वो आगे, जिसकी पवित्रता आगे वो आगे। तो ये जो सारी छाया है, शैडोज है, बट इसकी माया से भी बाहर निकलना, अपने आप को देखना है, मेरे जीवन में ऐसी कोई छाया तो नहीं जिसको मैं सत्य समझ रहा हूं और नीचे ही हार डाले जा रहा हूं जबकि हार ऊपर लटका हुआ है। जिसको हम ज्ञान समझ के रखा है वो तो केवल अहंकार ला रहा है, सच्चा ज्ञान तो ऊपर टंगा हुआ है। तो माया की छाया, छाया की माया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आज सुबह जो अव्यक्त वाणी चली, वैसे तो दो पार्ट है उसमें, एक रूहानियत वाली मुरली है महावाक्य और एक दूसरी पूरी मुरली है। तो जो फर्स्ट पार्ट है मुरली का, वो पूरा हम ऐसा स्टडी करेंगे, ऐसा अभ्यास करेंगे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर एक को वो पूरी मुरली ऊपर से लेकर नीचे तक याद हो जाए, एक भी पॉइंट न छूटे, इस तरह से उसको रिवाइज करेंगे। ओम शांति।